नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
Congratulations in space for facilitating
इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनजीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।